कुछ 3 साल पहले मैंने मेरे कॉलेज के जूनियर के साथ एक कंपनी की शुरुआत की थी। उस कंपनी का नाम था मंक एंटरटेनमेंट और उस कॉलेज जूनियर का नाम था विराज शेठ। अगर आपने हमारे इंग्लिश पॉडकास्ट सुने होंगे, आपको विराज शेठ की स्टोरी तो पता है कि उन्होंने खुद इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद कैसे बिजनेस अपने आप ही सीख लिया, कैसे कंपनी ग्रो करना सीख लिया और आज वो मीडिया इंडस्ट्री के एक जाने माने एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। वो एक विज किड माने जाते हैं, यानी कि बहुत लोग उन्हें देखकर ये कहते हैं कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा दूर जाएगा। ये है मेरे मंक एंटरटेनमेंट के को-फाउंडर। पर इस पॉडकास्ट में हमने स्टोरी के बारे में बात नहीं करी है, हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बैक एंड यानी बिहाइंड द सीन्स जर्नी के बारे में बात करी है, रोमांस के बारे में बातें की है, हमारे लाइफ के सिस्टम्स के बारे में बातें की है, हमारे स्ट्रगल्स के बारे में बातें की है। इस पॉडकास्ट से डेफिनेटली आपको मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, वो सब चीज़ें जो आप रणवीर शो के साथ एसोसिएट करते हो, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पर उसके साथ साथ बहुत ही मज़ेदार कॉन्वर्सेशन है यार। हम बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज के दो दोस्त हैं जो हमेशा बकचोदी करते रहते एक साथ। ये है हमारा थोड़ा सा बकचोदी वाला स्पेशल एपिसोड ऑफ द रणवीर शो, एंटरप्रेन्योरशिप बकचोदी, फीचरिंग मंक एंटरटेनमेंट को फाउंडर्स रणवीर अलाहाबादिया एंड विराज शेठ, द रणवीर शो हिंदी एपिसोड 2। स्पेशल द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है द विराज शेठ के साथ।
थैंक यू द का सम्मान देने के लिए धन्यवाद।
सम्मान नहीं था, गाली थी।
गाली थी,
हाँ। okay. अभी हम बात कर रहे थे कि जब बियर बाइसर्स मंकी की शुरुआत हुई थी 2-3 साल पहले, तो हमारे पुराने ऑफिस में 6-7 इंजीनियर मिलके सिर्फ काम करते थे और बकचोदी करते थे।
6-7 लॉन्डे मिलके बकचोदी कर रहे हैं बस।
फिर झलक रावल आ गई और हाँ। पूरी कंपनी को प्रोफेशनल बना दिया और हमारी पूरी डायरेक्शन चेंज हो गई। पर ये वाइब अलग ही है। जब आप लोगों से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे तो अक्सर सीरियस कॉन्वर्सेशन हो जाती है, जैसे कि द रणवीर शो इंग्लिश पर।
हाँ, कि सर व्हाट इज़ योर रेवेन्यू स्ट्रेटजी, व्हाट इज़ योर विजन 5 इयर्स डाउन द लाइन,
या एंटरप्रेन्योरशिप के इमोशनल ट्रॉमास क्या है। पर एंटरप्रेन्योरशिप की एक ब्राइट साइड भी होती है।
वो क्या है
आप बोलो।
अच्छा, मैं गेस टू यार। एंटरप्रेन्योरशिप की ब्राइट साइड काफ़ी चीज़ है यार। जैसे पहली चीज़, अगर आप दोस्तों के साथ काम कर रहे हो राइट, तो काम जैसा फील नहीं होता है। ऐसा लग रहा है कि पिकनिक पे जा रहे हो तुम, रोज
हंटिंग के लिए जा रहे हो
और हंटर तुम हो और तुम्हारा प्रे है तुम्हारा क्लाइंट। और तुमने क्लाइंट को उतारा है अपने जाल में। सर्विस भी दे रहे हो, अच्छी वैल्यू भी दे रहे हो, ऐसे नहीं है।
वैल्यू के बिना बिजनेस नहीं चलेगा।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो इट्स लाइक इट्स अ पिकनिक है कि यू नो टिकू जीनी वाड़ी जा रहे हो तुम। मुंबई गाइस विल गेट द रेफरेंस।
तो अभी 3 साल के बाद क्या आप इस जर्नी को लेकर ज्यादा सीरियस बन गए हो या ज्यादा कैजुअल बन गए हो? क्योंकि मुझे याद है कि जब आपने स्टार्ट किया था आप बहुत सीरियसली लेते थे खुद को, और आजकल आप खुद को काफी मानते हो।
मुझे क्या माना जा रहा है आजकल, इसलिए मैं मान रहा हूँ। बट हाँ, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका हो, क्योंकि आई थिंक जब तुम शुरू कर रहे हो कोई भी बिजनेस राइट, एंड स्पेशली इन अ स्पेस जब हम वी वर नॉट अ नेम एट ऑल, मुझे नहीं पता था कि मीडिया क्या होता है, मुझे नहीं पता था एडवर्टाइजिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता था टैलेंट मैनेजमेंट क्या होती है। मैं वो एक इंसान था जिसको एक तालाब में डाल दिया था और मैं तैरना सीख रहा था। तो तब मैं थोड़ा डरा हुआ भी था। अब थोड़ी सी स्विमिंग आ चुकी है तो मुझे पता है कि यार मैं डूबने नहीं वाला हूँ। तो मैं थोड़ा बैक स्ट्रोक मार सकता हूँ, थोड़ा बटरफ्लाई स्ट्रोक मार सकता हूँ, थोड़ी स्विमिंग पूल में कर सकता,
स्विमिंग पूल में पेशाब कर
सकता हूँ। एग्जैक्टली, तो वो वाला जोन आ चुका है अभी। तो इट्स अ लिटिल मोर रिलैक्स, थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा रिलैक्स चल रहा है। बट दैट्स वन ऑफ द मेजर की पॉइंट्स कि यार एंटरप्रेन्योरशिप में अगर दोस्तों के साथ काम कर रहे हो ना, ऐसे लगेगा कि यार बॉन्डिंग चल रही है, साथ में मस्ती कर रहे हैं, बट पैसा भी कमा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं,
करियर्स बिल्ड हो रहे हैं,
एम्प्लॉयमेंट बिल्ड हो रही है। दैट इज द बेस्ट पार्ट।
आपकी लाइफ का सबसे पेनफुल हिस्सा क्या है?
सबसे पेनफुल हिस्सा लाइफ का गर्लफ्रेंड ही है यार।
बट एक्चुअली इस चीज पर बात करते हैं। अक्सर काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो इनसेल्स हैं, यानी कि इनवॉलंटरी सेलिब्रेट, एज इन उनको ब्रह्मचारी बनाया गया है, एज इन दुनिया ने उनको ब्रह्मचारी बना दिया है। क्योंकि
यार तुम सेलिब्रिटी हो तो तुम गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते।
नहीं वैसे नहीं,
आई थिंक गर्ल्स ने उनको रिजेक्ट किया है.
अच्छा
तो उस चीज की वजह से वो विमेन हेटर बन जाते हैं और फिर अच्छा। लोगों को भी कहते हैं कि यार
गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड गोल्स पे फोकस करो.
गोल्स ओवर गर्ल्स.
आई जस्ट फील लाइक वो भी सही नहीं है. इनफैक्ट देयर शुड बी अ बैलेंस ऑलवेज. ये मतलब नहीं है कि यार गर्लफ्रेंड हुई तो डिस्ट्रैक्शन है. इफ यू हैव द राइट गर्लफ्रेंड शी कैन एक्चुअली हेल्प फ्यूल योर करियर, हेल्प यू नो मेक यू ग्रो एज अ पर्सन. वो आपके साथ साथ वो चलेगी एंड दैट्स व्हाट एवरी रिलेशनशिप इज. इट्स नॉट लाइक अरे लड़की आ गई तो यू आर जस्ट इमेजिनिंग ओ कोई अप्सरा आ गई है.
क्या कर रहे हो हाथों के साथ? क्या कर रहे हो?
मतलब दैट्स हाउ पीपल थिंक यार. कि लोगों को लगता है यार लड़की आ गई तो कोई अप्सरा आ गई है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मोटिव से आई है. बट दैट्स नॉट हाउ इट इज. दैट्स नॉट एन इक्वल रिलेशनशिप. तुम गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो ना कि तुम कोई नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के साथ कि यार वो आ गई तुम्हारे लाइफ में तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे.
गर्लफ्रेंड्स की बात आई तो मेरे को ऑब्वियसली खुद के बारे में बात करना है. रणवीर अलावादा
नहीं बात करता है यार ये खुद के बारे में.
रणवीर अलावादा चैनल पर हमारा एक क्रिटिसिज्म है कि हम बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड ओरिएंटेड कंटेंट बनाते हैं.
हाँ मुझे पता है काफी ब्रेकडाउन्स भी हुए हैं ये चीजों पे कि क्यों ये
इनसेल्स है. इनसेल्स ने किया ब्रेकडाउन्स.
क्यों ये बंदा ऐसे थंबनेल्स डाल के वीडियोस बना रहा है? बट भाई अगर तुम सिर्फ वीडियो के थंबनेल देख के जज कर रहे हो ना बुक को तो तुम बहुत गलत आदमी हो. जो सिर्फ हर बुक को पेज से फर्स्ट पेज से देख के बोलता है कि ये तो चुतिया बुक है. भाई तूने पढ़े क्या 10 पेज भी?
और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि लोगों को अक्सर ये लगता है कि क्योंकि मैं खुद स्पिरिचुअलिटी की बातें करता हूँ सीरियस बातें करता हूँ कि मैं हरामी नहीं हूँ. बट
लेकिन स्पिरिचुअलिटी का अगेन लाइक आई सेड बैलेंस होना चाहिए यार. यू आर तुम कलयुग में जी रहे हो भाई. अगर तुम पूरी तरह से एकदम मासूम एकदम गिविंग बंदे हो रहे हो तो तुम सही में जाके मेडिटेट करो यार हिमालयाज में. तुम बिजनेस मत चलाओ. तुम डोंट बी तुम जैसे यार
एक्सट्रीम्स में मत करो.
हाँ तुम वैराग्य ले लो बेसिकली. व्हाट शिव जी हैड टेकन राइट. ही वाज जस्ट ही डिडंट हैव अ फैमिली. उनके पास नहीं थी फैमिली. उन्होंने नहीं रखा था. आफ्टर दैट ही चोज एक्टिवली कि यार ठीक है आई विल बिकम मैं फैमिली भी रखूंगा और उस हिसाब से मुझे थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से करना भी पड़े शायद काम. तुम ये मत सोचो कि यार स्पिरिचुअल है तो यार गर्लफ्रेंड नहीं पटा सकता. भाई कहाँ लिखा है ये? क्यों? तुम स्पिरिचुअल हो सकते हो बट डू इट फॉर योर ओन पीस सो दैट जब तुम शांत होगे अंदर से जब तुम एम्पथी लाओगे. एम्पथी का मतलब बताइए भाई.
एम्पथी का मतलब किसी और के जज्बात अच्छे से समझना एग्जैक्टली उनके बोले बिना.
एग्जैक्टली तुम जब ये सारी प्रैक्टिसेस करोगे तुम जब रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस करोगे इन टर्म्स ऑफ कम बोलोगे ज्यादा सुनोगे.
कम हिलाया करो.
हिलाओ जो भी हिलाना यार वो तुम्हारा.
हमने तो नोफैप को इतना प्रमोट
हमने किया है बट मैं पुश नहीं करता वो कॉन्सेप्ट. तुम्हें करना है तुम करो. मुझे पता है
हेल्प हो जाती है.
हाँ मैंने जब किया था मुझे हेल्प हुई थी अच्छी खासी. आई नो दैट मैं भी हजारों दिनों तक नहीं वो प्रैक्टिस कर पाऊंगा. और
मतलब मुझे नहीं करना. आपने भी हिलाया है लाइफ.
मैंने हिलाया है लाइफ.
आपके अंदर से
छूटे हैं मेरे भी नन्हे विराज.
नन्हे शेठ
हाँ तो ठीक है उसमें. तो उसमें उसमें गलत क्या है? गलत क्या है यार? गलत क्या है?
नहीं पर दैट्स व्हाट लोग ये नहीं समझते कि YouTube भी एक बिजनेस की तरह होता है और YouTube की बिजनेस की मार्केटिंग टाइटल और थंबनेल में होती है. अगर आपने बहुत ही तोड़ू वीडियो बनाया पर उसका टाइटल और थंबनेल खास कुछ खास नहीं है कुछ क्लिकबेट नहीं है तो लोग नहीं देखेंगे.
यार हमने बनाया मेडिटेशन पे वीडियोस कितने व्यूज है? 50,000 व्यूज. क्यों? तुमने एक बंदे को देखा योगा कर रहा है. तुमने बोला छोड़ ये तो बकचोद कॉन्टेंट नहीं है मुझे नहीं देखना है. हमने बनाया लड़की के साथ हॉट लड़की के साथ फोटो कितना है? 2 मिलियन व्यूज. क्यों भाई? वो तो दैट्स व्हाट द ऑडियंस वांट्स टू कंज्यूम. बट सी द कॉन्टेंट्स इन द वीडियो ना. क्या बात की है? कर्टेसी की बात की है. टेबल मैनर्स की बात की है. एम्पथी की बात की है. तुम वीडियो जरा देखो ठीक से. एंड दिस इज नॉट अबाउट अस ट्राइंग टू बी अग्रेसिव. देखो यार एवरीवन हैज देयर ओन नोशंस. व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट टू अट्रैक्ट पीपल टू द गुड यू माइट हैव टू यूज सर्टेन ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे वो अट्रैक्ट हो जिससे वो उसको बोरिंग ना लगे चीज.
जैसे महाभारत युद्ध में धर्म को मेंटेन करने के लिए कोई कोई अधर्म का सहारा लेना पड़ा.
या इन अ सेंस कि ये भी अधर्म नहीं यार. ये इन अ वे आपको ही लॉर कर रहा है टू कंज्यूम गुड कंटेंट. वैसे तो यार काफी बकचोद कंटेंट तुम कंज्यूम कर ही लेते हो यूट्यूब पे. यहाँ पे क्लिक करके एक अच्छी एक वैल्यू सीख लोगे तो उसमें लड़की कैसे पटाए 10 ट्रिक्स. यार ये कुछ गलत बात नहीं है. यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन एंड दैट्स व्हाट नॉट एनी फीमेल बट एनी ह्यूमन विल वॉन्ट. सो दैट्स हाउ इट विल हेल्प यू.
गर्लफ्रेंड्स की बात आई तो मेरे को आपकी गर्लफ्रेंड्स और मेरी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करना है, बहुत नॉर्मल टॉपिक है, आई थिंक कि हर रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है खुद के बारे में, दुनिया के बारे में, ऑब्वियसली वो गर्ल के बारे में. तो आपकी लाइफ में एक जो सबसे बुरी गर्लफ्रेंड थी और एक जो सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड थी, उन दोनों से क्या सीखा, और फिर मैं कहूंगा मैंने क्या सीखा. मेरी सबसे बुरी गर्लफ्रेंड थी आप.
रणवीर नहीं बताना था यार, ये नाजायज रिलेशनशिप को नहीं डिस्क्लोज करना था.
ठीक है, खुद के बारे में बताओ.
तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि गर्लफ्रेंड्स बुरी थी, शायद वक्त बुरे थे.
कंपैटिबिलिटी नहीं थी. बुरी गर्लफ्रेंड मतलब मैं कह रहा हूँ कि कंपैटिबिलिटी नहीं थी आपके और उनके बीच.
हाँ, कि हम वर नॉट मेंट फॉर ईच अदर मे बी, राइट. तो उसमें एक्सपीरियंस थोड़े मैंने ये समझे कि यार जब पार्टनर गिविंग नहीं होता है, राइट, इक्वली, जब वो मैं जैसे तू हरामी तू बोलते रहता है ना कि मैं, मेरा देखो मेरा कंटेंट, मैं हूँ एंटरप्रेन्योर. अबे ठीक है यार, बाकी पे भी ध्यान दे. तो वो होना चाहिए, लाइक यू शुड बी गिविंग एज अ पार्टनर. काफी रिलेशनशिप जहाँ पे बुरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे वो 100% गिविंग कंपैटिबिलिटी नहीं थी यार, कि कोई एक बंदा रिलेशनशिप में ज्यादा ध्यान दे रहा है, ज्यादा प्यार दे रहा है.
और बताओ.
और ज्यादा सम्मान दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, राइट. वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं यार, एक तरफा प्यार अच्छा नहीं होता है. ठीक है, बॉलीवुड के पीछे मत तुम भागो फालतू में. फालतू के रणबीर कपूर के कॉन्सेप्ट्स मत सुनो. ये एक तरफा प्यार की कीमत ही कुछ और होती है. नहीं भाई,
दैट्स व्हाट चन्ना मेरा ना काफी लोगों की
हाँ, इट्स लाइक कि भाई मुझे सैड फील नहीं होना, फिर भी मैं चन्ना मेरा सुन लूंगा, मेरे आंख में से आंसू आ जाएंगे.
चन्ना मेरा बहुत अच्छा गाना था. विराज आजकल बहुत सुनता है चन्ना मेरा.
मैं रोज, मैं बचपन से ही सुन रहा हूँ, जब से आया हूँ भाई. आई लव अरिजीत सिंह, बिग बिग फैन अरिजीत सिंह.
तो बट वो ना बॉलीवुड में अनरिक्वेटेड लव को, वन साइडेड लव को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है. एक्चुअली अनहेल्दी होता है आपके लिए.
हाँ, टॉक्सिक है यार. एवरीवन इज लाइक कि नहीं, मैं प्यार में अपनी जान कुर्बान कर रहा
हूं, आशिक हूं.
हाँ, बट क्यों नहीं देनी जान, नहीं देनी है भाई, प्यार ही देना है सामने. वापस
जस्ट प्यार का बहुत ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट होता है बहुत लोगों के दिमाग में.
क्यों, ये क्यों बोल रहे हो आप?
कि आई फील कि प्यार एक्चुअली इवेंचुअली हर रिलेशनशिप में फेड अवे हो जाता है. उसके बाद सिर्फ पार्टनरशिप बच जाती है, फ्रेंडशिप बच जाती है.
बिल्कुल.
और प्यार डेफिनेटली होता है इनिशियल में, मतलब शायद 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी. पर जब आप बुढ़े बुढ़ी हो जाओगे तो आप
हॉट तो नहीं दिखोगे तभी.
हॉट तो नहीं दिखोगे. एक दूसरे से हर मोमेंट ये नहीं कहोगे कि बेबी आई लव यू ये वो. इवेंचुअली आप लाइफ के बारे में बात करते हो. जय शेट्टी हमारे जो इंग्लिश पॉडकास्ट के एक बहुत बहुत बढ़िया गेस्ट थे, उन्होंने एक चीज कही थी उस पर कि अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप इज आप किसी का हाथ पकड़ रहे हो और कह रहे हो कि अभी ना हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो इन प्रॉब्लम्स का सामना हम साथ में करेंगे.
Exactly.
वो होती है रिलेशनशिप की मीनिंग, ना कि चलो साथ में मिलकर सेक्स करेंगे. Yeah, चलो साथ मिलकर लव यू बोलेंगे.
वो एक टीम बॉन्डिंग होता है यार. एवरी टाइम यू नो, इट्स लाइक यू कुड गो टू वॉर विद देम. तुम सही में एक जंग लड़ सकते हो उनके साथ. दैट्स हु यू शुड हैव एज अ पार्टनर.
और आपकी बेस्ट रिलेशनशिप से क्या सीखा?
बेस्ट रिलेशनशिप वॉज वेयर देर वॉज ग्रोथ ऑलवेज, जहाँ पे स्पेस भी है बट ग्रोथ भी है.
ये आपको लगता है कि आप एंटरप्रेन्योर हो इसलिए ये कह रहे हो कि आपके लिए बेस्ट रिलेशनशिप ग्रोथ ओरिएंटेड रिलेशनशिप थी?
नॉट रियली. आई मीन इवन इफ आई वॉज नॉट एन एंटरप्रेन्योर, राइट, मैं सीख करूंगा कि यार बी इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे मैं रोज कुछ सीख रहा हूँ तुमसे, आप भी मुझसे कुछ सीख रहे हो. और ये जब रिलेशनशिप होगी ना, यू विल वॉन्ट टू स्पीक टू देम. आई थिंक एवरी द एसेंस ऑफ एवरी रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप की सबसे ज्यादा अहमियत सब आई थिंक कॉन्वर्जेशन और अंडरस्टैंडिंग पे दी जानी चाहिए. जब तुम अपने पार्टनर को समझ पाओगे, तुम अच्छा कॉन्वर्जेशन कर पाओगे. और कॉन्वर्जेशन मतलब यही नहीं कि यार मुझे स्पिरिचुअलिटी की ही बात करनी है, मुझे चक्रास की ही बात करनी है. नहीं भाई, तुम अगर तुम सेम काइंड ऑफ ह्यूमर भी पसंद करते हो, तुम सेम काइंड ऑफ टीवी शोज भी पसंद करते हो, और एल्स तुम ओपन हो कि यार अच्छा तुम अगर तुम्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा पसंद है और मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद है, तो ठीक है, हम दूसरे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे वो स्टोरीज. तो जब वो ओपननेस और वो चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म होता है ना रिलेशनशिप में कि यार ये जो बोल रहे हो ना मुझे सुनना है, ये तभी वो मजा आता है
एक बंदे को, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स को. पर चलो एंटरप्रेन्योर से कोई भी एम्बिशियस बंदे को,
हाँ,
जिसको ग्रोथ चाहिए लाइफ में,
हाँ,
उसको अपनी गर्लफ्रेंड्स के थ्रू क्या मिलता है? एंड ऑब्वियसली ये क्वेश्चन फीमेल्स के लिए भी है.
हाँ, वाइस वर्सा
कि एक जो अगर एम्बिशियस बंदी है तो उसे अपने बॉयफ्रेंड से क्या मिल सकता है, लाइक व्हाट इज अ गुड केस सिनेरियो?
वन इज स्पेस, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जैसे हमारी बातें हो रही थी, हमारी गपशप हो रही थी वो दिन स्पेस के बारे में, स्पेस क्या होता है कि यार सांस लेने की जगह होनी चाहिए, एक सांस लेने की जगह होनी चाहिए, बहुत डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो गया. इट शुड बी कि हाँ यार कि अच्छा अभी मैं काम कर रहा हूँ ठीक है, तो मुझे अभी नई लवी डवी बातें करनी है फॉर एग्जाम्पल, या अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे वो कॉल पे नहीं आना जहाँ पे मैं तुम्हें या तुम मुझे अपने सहेली के बॉस के भाई के बारे में बता रहे हो. देयर शुड बी अ टाइम फॉर दैट ऑल्सो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गार्बेज कॉन्वर्जेशन है. अगेन ऐसे मत सोचो कि यार तुम अगर डीप कॉन्वर्जेशन और तुम बुक्स और स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही बात कर रहे हो तो ही वो अच्छी रिलेशनशिप है. बट देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग. जब तुम्हें पता है कि यार डे इन द डे आई थिंक दिस पर्सन इज अ लिटिल बिजी, माई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इज अ लिटिल बिजी, तो मैं उनको नहीं कॉल करूंगा या करूंगी. आई नो उनका फुल अटेंशन हमें ये एक स्पेसिफिक टाइम पे मिलने वाला है.
वो ट्रस्ट होना चाहिए कि यार ये कहीं भाग के नहीं जा रहे.
एग्जैक्टली. और वो जब वो ट्रस्ट तभी आएगा जब तुम सिक्योर हो अपने आप
खुद, हाँ खुद के साथ.
जब तुम्हें पता है कि यार आई ट्रस्ट द पर्सन ब्लाइंडली और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना ही किसी कहीं और मुंह मार रहा हूँ, मैं नहीं चीटिंग कर रहा हूँ, मैं कहीं और किसी और लड़कियों से बात नहीं कर रहा हूँ इन दैट सेंस, तो एक ट्रस्ट होना चाहिए. एंड दैट विल कम जब तुम खुद एक ट्रस्टवर्दी लॉयल्टी इंसान हो तो तुम भी सिक्योर फील करोगी, तुम भी यही अज्यूम करोगी कि हाँ यार मैं भी लॉयल हूँ वो भी लॉयल ही है. और इस हिसाब से ये जब अजम्पशन होता है ना, दिस इज माई रूल ऑल्सो. मैंने ये रिसेंटली ट्विटर पर भी लिखा था कि कोई भी टाइप की रिलेशनशिप्स हो, बिजनेस या रोमांटिक या दोस्ती, मेरा एक रूल है, थंब रूल है कि मैं एक इंसान को दो बार ट्रस्ट करता हूँ ठीक है. पहली बार अगर उन्होंने मुझे बिट्रे किया या मुझे धोखा दिया, मैं बोलूँगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं नोटिस करूँगा वो, बट मैं कन्फ्रंट नहीं करूँगा. मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं.
आप कम्युनिकेट करोगे? पर
मैं कम्युनिकेट भी नहीं करूँगा, मैं उनको एक और चांस दूंगा कि ठीक है अगर कि मुझे तो पता है इसने क्या किया है, बट अगर इसको पता है कि मुझे भी पता चल गया तो ही विल नॉट डू दैट अगेन इंटेंशनली एवर अगेन ठीक है. वो वापस वो नहीं गलती फरमाएंगे. बट अगर उन्होंने एक और बार ये किया क्योंकि उनको लगा कि यार इसको थोड़ी पता चलेगा, ये तो बेवकूफ है, ये किया है, तब मुझे पता चल जाएगा कि इसका इंटेंशन ही गलत था, कि ये जा ही रहा था मुझे बनाने के लिए, इसको मुझे बेवकूफ बनाना ही था. तो ये मेरा रूल है कि हाँ ये तो फिर ये चीटर है बंदा. तो राहुल इज अ चीटर. राहुल इज अ चीटर.
ये क्या हो गया आपको? ये क्या हो गया?
कि ये बंदा चीटर ही है, तो इसके साथ मैं डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, इनके साथ मैं ना ही बिजनेस करूंगा. लेकिन हाँ हाँ कि ये मेरा थंब रूल है, दो बार ट्रस्ट करो उसके बाद मत करो थंब.
अच्छा. तो बेसिकली अच्छा अभी मैं मेरी बुरी गर्लफ्रेंड्स और अच्छी गर्लफ्रेंड्स,
अरे छोड़ ये नहीं बात करनी.
तो मेरी एक किसी ने मेरे पर चीट किया था और मैंने उसके उस सिचुएशन के बाद एक साल के लिए सोचा कि ये क्यों हुआ था, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से जा रही थी. और फिर मुझे यही पता चला जो आपने कहा कि कोई तब चीट करेगा जब वो खुद के साथ सिक्योर ना हो, तब जब उनके अंदर खुद सिक्योरिटी ना हो तब उन्हें यह लगता है कि नहीं यार मैं अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, चलो मैं कहीं और से वैलिडेशन ढूंढता हूँ या ढूंढती हूँ, तब चीटिंग होती है.
बिल्कुल.
तो आई थिंक दैट वुड बी माय वर्स्ट कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप.
और आपकी बेस्ट क्या रही है?
बेस्ट यू नो ये शायद गलत बात होगी कहने के लिए, पर जैसे कि आपने कहा कि हम दोनों स्पेस ढूंढते हैं, इवन एज बिजनेस पार्टनर्स हम एक दूसरे से स्पेस ढूंढते हैं. वी आर जस्ट बिल्ड लाइक
दैट. तो मुझे 10 बजे के बाद ही कॉल कर. हाँ, उसके पहले मत कर.
कि एंड दैट्स हाउ वी आर एज पीपल.
राइट.
मतलब हम ऐसे हार्डवायर्ड है, हमें स्पेस चाहिए क्योंकि बचपन से ऐसे हैं शायद.
राइट राइट.
तो आई फील कि जब आपकी रिलेशनशिप कोई ऐसे इंसान के साथ स्टार्ट होती है जहां उन्हें भी उतना ही स्पेस चाहिए जितना आपको चाहिए, वो सबसे बेस्ट रिलेशनशिप होती है. और जब वो इंसान खुद सिक्योर भी होगा, जितने आप सिक्योर हो, अगर आपकी सिक्योरिटी लेवल्स मैच हो जाएंगे, तो फिर वो बहुत फ्रूटफुल अच्छी रिलेशनशिप होती है. एंड आई थिंक कि जितने भी मेरे बुरे रिलेशनशिप्स रहे हैं वो इसी वजह से बुरे होते हैं, क्योंकि वो इंसान को
स्पेस नहीं थी.
हाँ, रिलेशनशिप. एंड आई थिंक यू विल से द सेम थिंग.
हाँ, क्योंकि उनको लग रहा था या तुम्हें लग रहा था कि नहीं यार ये एक एक देयर इज वन थिंग दैट पीपल से ये तुम्हारे लीग से बाहर है. ये तुम इसके लीग से बाहर हो. इसका जरा आप अगर बताएंगे व्हाट इज दिस saying.
फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपने मेरे को ये चीज़ कही थी कि लीग्स जैसी कोई चीज़ एक्चुअली होती नहीं.
राइट.
लोगों को अक्सर ये लगता है कि ये इंसान इतने गुड लुकिंग है, इतने स्मार्ट है, मेरे लीग से बाहर है. बट ट्रस्ट मी, मैंने खुद ये देखा है. मैं खुद को बहुत, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ करता था पहले. पर जब मैंने खुद में कॉन्फिडेंस लाया और खुद से ये कहा कि नहीं यार यू कैन अप्रोच एनी गर्ल या यू नो आपकी रिलेशनशिप कल प्रियंका चोपड़ा जैसे इंसान के साथ भी हो सकती है
राइट इफ यू विश फॉर दैट
इफ यू विश फॉर दैट आपको बस खुद में उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और दूसरे फैक्टर्स भी है खुद को ग्रूम करो ड्रेस वेल करियर में कुछ करो
राइट
स्मार्ट बनो बुक्स पढ़ो वो फैक्टर्स भी होते हैं बट उसका बेस होता है कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ तो आई फील कि लीग जैसी चीज नहीं होती बट इस चीज को समझने के लिए आपको वो एक्सपीरियंस करना ही होगा
बट आर यू सेइंग कि प्रियंका चोपड़ा ऐसे इंसान से शादी करेंगी
ऑफ कोर्स
जो उनसे 1/10 भी नहीं कमा रहे
अगर आपने प्रियंका चोपड़ा के साथ फ्रेंडशिप करी पहले और ये जाना उनके बारे में प्रियंका चोपड़ा की बात ऑब्वियसली नहीं हो रही है ये बस एग्जांपल यूज कर रहे हैं ऑफ अ कंप्लीट
से प्रियंका चोपड़ा इज यूज्ड एज अ वेरी अट्रैक्टिव फीमेल हु यू वांट टू अप्रोच
तो आई फील कि देखो दो अप्रोचेस होती है एंड ये मैंने दोनों अप्रोचेस यूज किए हैं पहले तो हाँ जो पहली अप्रोच है वो थोड़ी फ्लर्टी अप्रोच होती है इस पर वीडियोस भी बनाया जैसे पुश पुल टेक्निक हमने
बताओ इतना ज्ञान देके वीडियो के पहले अब आके लड़की कैसे पटाए पे ही बात ही हो रही है
बेसिकली अगर आपको किसी का दिल जीतना है और आपको ये पता है कि डेफिनेटली आई लाइक दिस पर्सन और आपको खुद लगता है कि यू हैव अ चांस तो फिर जाके डायरेक्टली फ्लर्ट करो कॉन्फिडेंस के साथ ये सेल्स टेक्निक भी होती है आपकी सेल्स स्किल भी बढ़ेगी
राइट
जो लर्निंग्स आपको ये दुनिया में मिलेंगे आप अपनी बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते
आई अग्री
ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये कुणाल शाह कह रहे हैं जिन्होंने फ्री चार्ज बनाई थी क्रेडिट
बिलियन डॉलर की कंपनी
एग्जैक्ट उन्होंने कहा कि इंडिया में सेल्स स्किल बहुत कम है क्योंकि हमारा डेटिंग कल्चर नहीं है और डेटिंग कल्चर क्यों नहीं है क्योंकि हजार ऐसे बंदे हैं जो रिजेक्ट होके ये कहते हैं कि नहीं ऑल गर्ल्स आर शिट
एग्जैक्टली
लाइक थोड़ा सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में सोचो चेंज योर पर्सपेक्टिव्स अब ठीक है यार भारतीय संस्कृति में अलग अलग चीजें लिखी है मैं वो चीजें भी अडॉप्ट करता हूँ पर दुनिया की संस्कृति में जो बेस्ट चीजें मैं उनको भी अडॉप्ट करता हूँ
एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू कि कलयुग यार तुम ये मत सोचो कि यार मेडिटेशन ही करना है 10-12 घंटे नहीं यू विल हैव टू गो आउट देयर यू विल हैव टू गेट अ जॉब तुम्हें जाके अप्रोच भी करना पड़ेगा यू विल हैव टू अप्रोच मोर जॉब सीकिंग अपॉर्चुनिटीज मोर विमेन इफ यू वॉन्ट टू डेट And what not? You will have to approach more people to make friends. वैसे ही होता है तुम ये जाके नहीं बोल सकते हो कि यार मैं सिर्फ अपने आप पे फोकस करूंगा और मैं सिर्फ अपनी चीजें करूंगा See, that is definitely one of the ways. कि यार that will attract more people towards you, but you will also have to take equal effort. You can't just be like कि नहीं मैं सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ मुझे पता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं अपने हिसाब से सबसे बात करूंगा That's
दुनिया ऐसे नहीं चलती
दुनिया ऐसे नहीं चलती यू इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्ल्ड यू नो वन वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद अ कॉकी पर्सन ठीक है कॉकी पर्सन का मतलब बताए
कॉकी विराज शेट कॉकी है नहीं कॉकी पर्सन मतलब घमंडी
हाँ कि यार मेरे पास लाखों रुपए है मैं शेर हूँ मैं अपने घर में अपने रूम में बैठ के अपना काम करूंगा मुझे किसी से इंटरेक्शन नहीं करना है एंड दैट इज समथिंग आई विल टेल यू आई यूज्ड टू बी दैट गाय
यूट्यूबर्स के साथ बहुत ज्यादा होता है
राइट
सब यूट्यूबर्स के
क्यों भाई यूट्यूबर्स के साथ सब दुनिया की नाइंसाफी हो रही है नहीं
नाइंसाफी नहीं है पर ओके ये मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ युवाल नोआ हरारी की उन्होंने पावर के बारे में बात किया था तो बेसिकली यूट्यूब का आउटकम पैसा और फेम नहीं है पावर है इन्फ्लुएंस आपको लोगों के दिमाग पर पावर मिल जाता है इन्फ्लुएंस मिल जाता है
राइट
तो अब ये आपका पब्लिक पर्सोना बन जाता है मान लो आपने अपने फैंस को जाकर आप गए मिलने और कोई फैंस को आपने हायर कर लिया ठीक है और ये बहुत होता है हमारे साथ कि हम बहुत सारे अपने खुद के फैंस को हायर कर लेते मंकी बियर बाइसेप से नहीं
अच्छा काम मतलब, के लिए
हाँ यूट्यूबर्स अपने फैंस को हायर कर लेते अभी अगर आपके आसपास सिर्फ आपके फैंस हैं जो आपको भगवान मानते हैं जिसका
पेडेस्टल पे डाल रहे हैं पेडेस्टल का मतलब क्या हुआ
मतलब आपको एक भगवान की तरह मान रहे बेसिकली
एक दर्जे पे चढ़ा रहे ऊपर
तो फिर आपको असलियत के बारे में कभी नहीं पता चलेगा बिकॉज आप यस मैन को ब्रीड कर रहे हो आप अपने आसपास ऐसे लोगों रख रहे हो जो हमेशा आपको ये
जी सर, जी
आप
सर,
ही, आप ही
यस सर आप हीरो सर आप बेस्ट हो सर
तो ये हो गई एक थियरी जो यूट्यूब की दुनिया में होती है पर एक और थियरी है युवाल नोआ हरारी ने नेतन्याहू के बारे में बात किया था नेतन्याहू इसराइल के पीएम है मतलब जैसे हमारे यहाँ मोदी जी है वहां नेतन्याहू है तो इसराइल में एक पार्टी हुई थी जहां इजरायली टॉप 30 सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था उसमें युवाल बुलाए गए थे तो युवाल ने उस चैप्टर में लिखा है कि मैंने देखा कि उस पार्टी में सब बिलियनर थे साइंटिस्ट थे ऐसे बड़े बड़े लोग थे बहुत अकॉम्प्लिश लोग थे और हर कोई नेतन्याहू की चाट रहा था कि कह रहे थे कि नहीं यार सर आप ही हो आप ही हो अभी नेतन्याहू अगर मान लो वो उसका दिल साफ भी है उसको पावर नहीं चाहिए बट फिर भी
दिया जा रहा है
हाँ दिया जा रहा है और
लो सर
ये तो लोग बिलियनर हैं राइटर्स हैं साइंटिस्ट हैं तो आप ये सोचो कि जब वो आम लोग को मिलने जाते हैं या right. अपने कैबिनेट के साथ काम करते हैं, वो लोग उनकी कितनी चाटते
हैं. राइट राइट.
तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, अगर आपने महान कुछ कर लिया अपनी लाइफ में, अगर आपने पावर पा लिया अपनी लाइफ में, तो फिर लोग आपको एक पेडेस्टल पर रखेंगे और उसकी वजह से आपको ये ऑटोमेटिकली लगेगा कि जो आप सोच रहे हो ना,
मैं
जो भी आप सोच रहे हो वो 100%
सही, मैं भगवान हूँ,
मैं भगवान हूँ,
वो गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि भाई बॉस मैं ही हूँ.
और ये गॉड कॉम्प्लेक्स रीडिंग से बहुत टूट सकता है, ये मैंने देखा, लाइक एज इन इट्स रीडिंग कैन सेव यू, रीडिंग आपकी जान बचा सकता
है. वो तुम्हें बताता है कि नहीं तू कुछ नहीं है भाई, दुनिया में इतना विजडम और नॉलेज है कि तू उसका 1% भी नहीं ग्रास्प कर चुका है, व्हिच इज व्हाई दे से नॉलेज इज द ट्रू एक्चुअल पावर, राइट.
और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स हैं इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया नहीं है, मतलब जेन्युइनली बहुत कुछ अचीव नहीं किया है. कोई
क्या आप अपने आप को भी यही मानोगे?
हाँ, आई फील कि मुझे कॉन्स्टेंटली लगता है मैं 27 साल का हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत स्लो गया हूँ अपने करियर में. वेन आई नो कि ठीक है, मतलब मेरी स्पीड भी अच्छी है, पर मुझे लगता है कभी कभी मैं बहुत स्लो गया हूँ करियर.
ओके, क्यों है ये, क्यों क्यों लग रहा है ये?
बहुत भूख है मेरे में, मेरे को और बहुत कुछ करना है लाइफ में,
तो खा ले.
तो एनी वे अबाउट द यूट्यूबर्स, वो लोग क्या होता है ना उनके साथ, वो बेसिकली कोई कोई लोग हैं जिन्होंने 12th pass भी अच्छे से नहीं किया और पढ़ाई के बारे में ज्ञान देते हैं, करियर के बारे में ज्ञान देते हैं, जब उन्होंने शायद ऑफिस में भी काम नहीं किया खुद.
राइट.
और क्योंकि वो अच्छे कम्युनिकेटर्स है, अक्सर जनता को लगता है कि यार हाँ
सही बोल रहा है,
ये आदमी सही है, ये जो भी कह रहे हैं.
क्या आप ही अपने बारे में भी नहीं बोलोगे कि आप भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलते हो? व्हाट डू यू सजेस्ट? आपको नहीं लगता है कि मे बी इट्स नॉट माय प्लेस?
मैं जो भी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, हमेशा 1 साल के लिए उस चीज़ को प्रैक्टिस करो,
खुद पे इम्प्लीमेंट करते हो आप पहले, उसके बाद ही आप,
क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे खुद पे, तो फिर आपको पता चलेगा कि इस थॉट प्रोसेस के बेनिफिट्स क्या है और कॉन्स क्या है, कि गलत अगर किसी चीज़ को होना है इस प्रोसेस में तो वो क्या क्या गलतियाँ हो सकती है.
गॉट इट. तो दैट मेक सेंस कि आप खुद पे पहले, आप खुद को गिनी पिग बनाते हो, खुद को लैब रैट बनाते हो कि यार मेरे पे कैसे कीटो चल रहा है, मेरे पे कैसे चक्र मेडिटेशन चल रहा है या जो भी है, उसके बाद ही आप वो.
और अगर मान लो मैं किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करो, ये करो, तो मैं हमेशा वो इंस्ट्रक्शंस देने से पहले या तो रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ या बुक्स पढ़ता हूँ या एक्सपर्ट से बात करता हूँ और फिर मैं कुछ कॉन्टेंट डालता हूँ. मैं रिस्पॉन्सिबली कॉन्टेंट डालता हूँ.
राइट.
पर ये मैंने इंडिया में देखा कि बहुत लोग कुछ भी डाल देते, गलत एडवाइस डाल रहे हैं, एंड मेरे अकॉर्डिंग गलत है क्योंकि मैंने वो गलतियां खुद की है.
गॉट इट.
और मैंने देखा कि नहीं यार ये
नहीं चलता है,
ये नहीं चलता है. और मैंने दुनिया देखी है, मैंने बहुत ट्रैवल किया अपनी लाइफ में. ऑनेस्टली यूट्यूब की एक बेनिफिट है कि आपके करियर में, आपकी लाइफ में बहुत दरवाजे खुल जाते हैं, एज एन आपका नेटवर्क का पावर, आपकी नेटवर्क की साइज, आपकी नेटवर्क की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ये लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं
बिल्कुल.
और जब आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो, इतने हाई पावर हाई सक्सेस वाले लोगों से मिल रहे हो, जो वो कहते हैं ना वो अक्सर सही चीजें होती है.
राइट.
एज एन वो आपको एग्जैक्टली सही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं
क्योंकि दे हैव अचीव्ड इट ऑल. तो वो उनको झूठ बोलने में कोई शौक नहीं है, प्लस दे आर नॉट देयर टू इंप्रेस एनीवन. राइट. तो वो सच बताएंगे आपको.
एंड एक्चुअली ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है. आई फील कि जितनी ग्रोथ हमारी पिछले 1.5 साल में हुई है, उसकी स्पीड मैंने एंटिसिपेट नहीं की थी. मुझे लगा नहीं था कि इतनी स्पीड के साथ ग्रोथ हो जाएगी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बियर बाइसेप, सब कुछ मंकी बियर बाइसेप, जो हमारे अभी के फ्यूचर के प्लान है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं
बिल्कुल.
और ये हुआ क्योंकि हमें एक बहुत तगड़ा नेटवर्क मिल गया सोहो हाउस की वजह से.
अग्रीड.
अपने पास्ट वर्क की वजह से 4-5 साल के लिए बहुत मेहनत की और फिर बहुत सारे दरवाजे खुलने.
लेकिन क्या आप ये बोलोगे कि ये जो नेटवर्क इफेक्ट जो एक चीज बोलते हैं, राइट, कि एक चीज से दूसरी चीज पाना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि एक मुकाम पे हो आप ऑलरेडी, वुड यू नॉट से कि वो प्रिविलेज की वजह से होता है कि यार कि हमने एक मुकाम पे लाया है खुद को, या तो आप एक प्रिविलेज फैमिली से रहे हो? डू यू थिंक दैट इज अ फैक्टर फॉर इट कि आपने कमाया है ये चीज?
नहीं, मैंने कमाया क्योंकि ये अगर मैंने पहले ही देखो, जहां मैं हैंग आउट करता हूँ सोहो हाउस में, वहां बहुत.
सोहो हाउस क्या है?
सोहो हाउस आप समझाओ.
सोहो हाउस भाइयों बहनों, सोहो हाउस एक ऐसी जगह है जो एक एक्सक्लूसिव क्लब नहीं होता है, जहां पे आपने मूवीज वगैरह में देखा हुआ होगा कि बाहर एक मुस्टंडा बाउंसर खड़ा हुआ है जो आपको रोक रहा है, नहीं शो मी योर आईडी. इन अ वे आप वो हिसाब से विजुलाइज करो कि अगर आप जिसके पास मेंबरशिप कार्ड है या फिर आपके दोस्तों के पास मेंबरशिप कार्ड है तो ही आप वहां पे जा सकते हो. और वहां पे कौन कौन से लोग घूमते हैं?
शाहरुख खान आते हैं वहाँ, मीडिया एंटरप्रेन्योर्स आते हैं वहाँ. मैंने सिड रॉय कपूर से मुलाकात मेरी वहाँ हुई थी, विद्या बालन से.
इनकी नेटवर्थ क्या होती होगी
ऑन एन एवरेज? अगर आप एक सैटरडे नाइट वहाँ गए, ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 50 करोड़ की नेटवर्थ होगी
पर पर्सन
ऑन एन एवरेज.
ओके,
मतलब ऐसे ऐसे लेवल्स के दरवाजे खुल जाते हैं मेहनत के बाद. और वहाँ मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे अमीर बाप के बेटे भी आते हैं अपने नए नए बिजनेस को लेकर कि मैंने अभी एक महीने पहले खोला है.
राइट.
और उन्हें वो सम्मान वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है
क्योंकि वो ये तो फैमिली बिजनेस चला रहा है.
हाँ, इन कंपैरिजन टू अ बियर बाइसेप्स और अ बियोनिक, क्योंकि लोग
न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स हैं. हाँ, ये इनकी फैमिली से छोड़ के कुछ उन्होंने बिजनेस स्क्रैच से शुरू किया,
पर उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है क्योंकि पीपल रिस्पेक्ट यू आफ्टर यू हैव अर्नड अ पोजीशन.
राइट.
कि आपने ठीक है 4-5 साल के लिए मेहनत की है ना, मतलब आपकी भी कोई
Standing है सोसाइटी में
और कॉन्क्रीट एक्सपर्टीज है.
राइट.
किसी चीज में आप बहुत अच्छे हो इसलिए 4-5 साल से ये चीज कर रहे हो.
राइट.
उसकी वजह से आपको बहुत सम्मान मिलता है सोहो हाउस में, और उस सम्मान की वजह से आपकी नेटवर्किंग हो सकती है वहाँ.
राइट.
पर मान लो कल सिड रॉय कपूर, रॉनी स्क्रू वाला जैसे कोई शख्सियत वहाँ सोहो हाउस में बैठे हुए हैं और इन बच्चे एंटरप्रेन्योर्स में से कोई वहाँ गया, उनसे बात की, तो वो उनसे बात नहीं करेंगे.
क्यों नहीं करेंगे?
मतलब पोलाइटली बात करेंगे, हाँ में हाँ मिला देंगे, हेलो बाय बाय कर देंगे.
बच्चे एंटरप्रेन्योर्स से आपका क्या मतलब है?
जिन्होंने
फैमिली कनेक्शंस के थ्रू आए हुए.
हाँ, जो फैमिली कनेक्शंस के थ्रू आए हुए और जिन्होंने अभी अभी हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया.
राइट.
क्योंकि और ऐसे बहुत लोग घूमते हैं वहाँ जो पिच करते हैं.
राइट.
मतलब थोड़ी जो
फैन बॉय करते हैं. क्या आप ये मानोगे कि यार एक दिस इज अनदर थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, फैन बॉय कल्चर इन इंडिया बहुत ही इन अ वे ठीक है यार, आप दिल से मानो किसी को एडमायर करो, बट फैन बॉय जब आप कर रहे हो आपका क्या, do you want to talk about this?
मतलब मेरा कुछ फैन बॉय को लेकर ओपिनियन नहीं है. लाइक जब मान लो अगर मेरे फैन बॉय फैन गर्ल आए, मैं बहुत आभारी हूँ, आई एम ग्रेटफुल. पर
बट अगर मैं अगर बियर बाइसेप्स ऑर्गेनाइजेशन में एक अपॉर्चुनिटी के लिए पूछ रहा हूँ, तो क्या आप मैं जब फैन बॉय कर रहा हूँ आपके ऊपर कि सर थैंक यू सर आपके पैर छू रहा हूँ मैं, सर एक और अपॉर्चुनिटी दे दो, सर मेरा प्लीज ईमेल रीड कर लो सर, उनको हायर करोगे या आप
मैं
इक्वल्स जो हिसाब से आप आएंगे, नाइस वर्क अप्रिशिएटेड, बाय द वे मेरी ये स्किल्स है, मैं आपके साथ काम करना चाहूंगा.
मैं काबिलियत को स्कैन करूंगा उनकी क्वालिटी है, अगर वो बहुत मेरी चाट रहे हैं तो मैं उनको कहूंगा प्लीज ये मत करो.
राइट.
बिकॉज मैं आपका कोई मतलब टीम ओनर नहीं हूँ, मैं आपके साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ, आप ओपनर हो, मैं नंबर 3 बैट्समैन हूँ, गांगुली हूँ, आप सचिन हो, आप सहवाग हो, मेरे को वो चाहिए. मैं एक बार समझा दूंगा, और ये मैंने प्रोसेस देखा है बियर बाइसेप्स में भी. हमारे कोई हाई परफॉर्मिंग हायर्स रहे हैं जो पहले फैन बॉयज थे पर अब बहुत ही की टीम मेंबर्स बन गए.
बिकॉज दे रियलाइज इट्स एन इक्वल गेम ऑफ सॉर्ट्स. राइट. कि अगर मैं अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहा हूँ तो मुझे सर प्लीज थैंक यू ये वो आप बेस्ट हो वो हिसाब से नहीं जाना है.
ये यूट्यूबर सोशल मीडिया स्टार का करियर काफी एम्प्टी करियर है.
राइट. ये क्यों बोलते हो आप?
ठीक है यार, मतलब बहुत बहुत मिला है भगवान की कृपा से, बहुत मिला है.
राइट.
दुनिया की कृपा से बहुत मिला है. जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया आई एम ग्रेटफुल, लाइक मैं रो दूंगा उतना ग्रेटफुल हूँ. पर ये एक इंसान पर जो खुद यूट्यूबर होता है बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देता है.
राइट.
बहुत सारी चीजें आप पर अकेली रिलायंट होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर बेस्ड मेल्टडाउन भी होते हैं हर इंसान के साथ. आशीष के साथ बात की है, ही हैज गॉन थ्रू दिस, निक हैज गॉन थ्रू दिस.
क्यों ये प्रेशर है कि परफॉर्मेंस प्रेशर है? ये
परफॉर्मेंस प्रेशर होता है थोड़ा. देखो हमारा बिजनेस भी अलग है, ये बिजनेस ही है बेसिकली.
हाँ.
पर दिस बिजनेस इज रिलायंट ऑन वन फेस, मतलब ये एक इंसान पर निर्भर है, तो वो एक इंसान पर बहुत प्रेशर आता है
कि यार नॉर्मली कंपनीज में एक सीईओ ने गलती कर दी तो दूसरा सीईओ ला सकते.
और इसकी फ्लिप साइड ये है कि मान लो आपकी क्रिएटिविटी कल खत्म हो गई, आपकी मोटिवेशन कल खत्म हो गई, आपने डिसाइड किया कि नहीं यार मैं बीमार हो गया, कोरोना वायरस हो गया, मैं अभी क्वारंटीन में हूँ,
तो धंधा ठप
पूरा. फिर आपके सैलरीज कहाँ से आएंगे, ये प्रेशर होता है. आपके अंदर एनर्जी नहीं बची है, क्रिएटिविटी नहीं बची है, फिर भी आपको कहीं से पुश करके एक वीडियो निकालना है.
बिल्कुल, बिल्कुल.
बहुत हाई प्रेशर करियर होता है. एंड आई फील कि डेफिनेटली हम सेलिब्रिटी बन जाते हैं, हम फेमस बन जाते हैं, पर फेम एक बहुत अच्छी चीज़ भी है और फेम एक बहुत
टेम्पररी है
और एम्प्टी है.
मतलब मेरे ख्याल से, और शायद ये मेरे अंदर का एंटरप्रेन्योर बात कर रहा है, पर मेरे हिसाब से फेम के साथ कुछ करना चाहिए आपको लाइफ में। मतलब
क्या आपको लगता है कि फेम, अगर फेम और मनी में आपको चूज करना, आप क्या चूज करेंगे? क्यों?
क्योंकि मनी की वजह से आप चेंज ला सकते हो दुनिया में, फेम की वजह से कल
मान फेम की वजह से भी तो ला सकते हो।
इंडिया का सबसे मशहूर बंदा कौन है?
अमिताभ बच्चन
या रजनीकांत?
रजनीकांत।
और इंडिया, अगर मैंने आपसे कहा कि इंडिया में सबसे अमीर बंदा कौन है?
मुकेश अंबानी।
ठीक है, और कल मैंने आपसे कहा कि छत्तीसगढ़ में 10 गांव है और उन 10 गांव में 1000 घर बनाने हैं क्योंकि वहां आंधी आने वाली है, और उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हमें कल ही 10 या 1000 घर बनाने।
बिल्कुल।
तो आप अमिताभ बच्चन के पास जाओगे या मुकेश अंबानी के पास जाओगे?
मुकेश अंबानी।
तो इसलिए आई फील कि, और वो मेरा कोर थिंकिंग है कि जब मैं 70 साल का हो जाऊंगा, 80 साल का हो जाऊंगा, मुझे स्वदेश का शाहरुख खान बनना है, और उस वो बनने के लिए मैं एक शाहरुख खान नहीं बनूंगा, मैं 1000 शाहरुख खान बनाऊंगा। और वो करने के पहले मुझे पैसा चाहिए, मुझे कैपिटलिस्ट बनना चाहिए, मुझे सेल्स सीखनी है, और मेरी सेल्स स्किल इंप्रूव करने के लिए मुझे डेट करना है लड़कियों।
मजाक था, एक और वीडियो नहीं बन जाए इसके ऊपर।
तो नहीं, बट व्हाटएवर, आई फिगर अगर वीडियो बनाने आई पहले, जब आई थिंक मेरे पहले महीने में यूट्यूब के पहले 3-4 महीने में जब हेट मिलता था, इट यूज टू गेट टू मी, ये क्या हो रहा है।
हाँ,
पर आई थिंक एक साल के अंदर ही मैं बहुत हेट को लेकर बहुत नंब हो गया।
मुझे पता है भाई, मुझे बताओ, मुझे पूछो, मैं, मेरी फटती है अभी भी, ठीक है?
बोलो हेट के बारे में कुछ बोलो।
मेरी फटती है व्हेन आई सी, बिकॉज ओके, ठीक है, ये बंदा ऐसा है जो कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस डालता है, ठीक है, इंटरनेट पे, और एंड एज इज मैनेजर माई थिंग इज ऑलवेज कि यार मत डाल, क्यों पंगे लेने यार फालतू में, नहीं है पॉइंट, इट्स पॉइंटलेस, इट्स गोइंग टू डिस्टर्ब 10 पीपल।
गरम पंजाबी खून है।
हाँ, नहीं यार, वो जो भी हो, इट्स गोइंग टू डिस्टर्ब 10 पीपल, क्यों करना है, छोड़ना यार। बट देन ही ऑल्सो इज राइट, वो सही बोलता है कि यार अगर मैं ओपिनियंस अपने अनफिल्टर्ड नहीं डालूंगा तो लोगों को लगेगा कि ढोंग चल रहा है, एंड वो मुझे ढोंग नहीं करना है। आई नीड टू हैव द यू नो, आई नीड टू हैव द कम्फर्ट जहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस के साथ अपने थॉट्स शेयर कर सकूँ। और वहां पे अगर 10 में से 2 लोगों को हेट थ्रो करना है, ट्रोल करना है, तो
कर लो,
तो कर लो यार, आई डोंट गिव अ फक ऑन दैट, अबाउट दैट।
पर हमारे साथ भी ऐसी एक दो सिचुएशंस हुई है जहां हमें भर भर के
गाली आई है,
फाड़ गाली आई है, लाइक, और मतलब 2-3 दिन के लिए गाली आई है
नॉन स्टॉप।
पर ये कब हुआ था? ईयर 4 में,
राइट?
मतलब अभी एक साल पहले, जो भी, आई स्वेयर टू गॉड, मतलब
मेरी फट के हाथ में आ गई थी। मैंने बोला भाई डिलीट कर, खत्म कर,
पर आई वाज लाइक
5 दिन तक ट्वीट मत कर।
आई वाज लाइक ठीक है यार, आई साइंड अप फॉर दिस जॉब, ये मतलब, और मैंने खुद ओपिनियंस डाले थे, ये आई हैव टू फेस दिस। मेरा वो एटीट्यूड था, और सच में वो एटीट्यूड था, जब वो हेट आ रहा था, मैं बाकी के अभी जो अगले 2 हफ्ते के स्क्रिप्ट से वो सब लिख रहा था कि हाँ अभी क्या बात कर सकते, ये मेरे दिमाग में वो चल रहा है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। बट आई थिंक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वैसे बहुत रोते हैं हेट के बारे में कि मार गए। चलो ओके, डेटिंग की बात हो गई, शादी की बात करते हैं। आपने शादी के बारे में क्या सोचा? आपकी उम्र
कभी छप रहे हमारी कार्ड बंदी।
मैं शादी के बारे में बहुत कुछ सोचता हूँ यार, मैं फैमिली के बारे में सो, आई डोंट नो ब्रो, लाइक हो जाता है।
उदय चोपड़ा हो गया धूम में से।
वो भी होता है सच में, कभी कभी मैं किसी स्पिरिचुअल लड़की को मिलता हूँ तो मुझे कभी कभी वो,
स्पिरिचुअल लड़की की डेफिनेशन क्या है भाई बताओ?
जो मेडिटेट करे, हु स्पिरिचुअली ओपन, जिसके साथ मैं बहुत गहरे स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन कर सकूँ और वो मेरी स्पिरिचुअल बातें सुन सके, लाइक एज इन बहुत लोग स्विच ऑफ हो जाते हैं।
हाँ, जैसे कि मैं।
नहीं,
आप ज्ञान मत दे यार,
आप भी मीडियम लेवल हो, आप एकदम चुप नहीं हो। तो बेसिकली बट मैं, हमारे टीम में एक मेंबर है आयुष तिवारी करके, उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज कही थी मुझे। आयुष तिवारी कहते हैं कि द बिग बेनिफिट ऑफ गेटिंग मैरिड, और ये उनकी फैमिली उनसे कहती है कि एक इंसान पर अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस आ जाते हैं, और सिर्फ इमोशनल हेल्थ के लिए एक मैरिज होना जरूरी है। तो अगर आपने मुझसे ये चीज 22 साल की उम्र पर कही थी, कही होती, तो आई वुडंट बिलीव इट। मैं ये सोचा कि क्या बात है। पर 27 साल के होने के बाद अब आई अग्री कि मैंने,
किस चीज पे आप अग्री करो, क्यों शादी होनी चाहिए?
देखो, मैंने बहुत लोगों को डेट किया, एंड जब मैं किसी को डेट करता हूँ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू टेक वन डे एट अ टाइम. मैं शादी के बारे में नहीं सोचना, पहले मेरे को आपको अच्छे से जानना है. एंड कभी कभी क्या होता है ना, आपका पहला महीना उनके साथ या पहला साल भी उनके साथ बहुत अच्छा जाएगा,
पप्पी लव
हनीमून फेज होगा. और फिर 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद या जो भी हर इंसान के हर रिलेशनशिप के वो
पादना शुरू करेंगे फिर. फिर उनकी रियल साइड तुम्हें पता चलेगी
जब
आप ये भी पादते हैं.
और 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 जब हम पाद की बात कर रहे हैं, वो फिजिकल पाद्स नहीं होते, उनके उनके बुरे फैक्टर्स निकल कर आते हैं. और फिर आपको पता चलता कि नहीं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकता, ये मेरे लॉन्ग टर्म पार्टनर नहीं है. और फिर मैं कह देता हूँ लोगों को, आई डोंट सी माई सेल्फ इन विथ यू इन द लॉन्ग टर्म. और
what are the two factors that you will look in a partner to say that okay, I can get married to this?
Spirituality or space. ये, पर ये क्योंकि मैं सेल्फ अवेयर हूँ, मैंने बहुत लोगों को डेट किया है और ये बहुत ईजी है, मतलब सुनने में, पर बहुत मुश्किल है. लाइक एक्चुअली किसी में ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़्यादा मुश्किल.
अगर उनके अलाइनमेंट्स, जैसे कि उनके पॉलिटिकल विचार, उनके रिलीजियस विचार, उनके विचार इन टर्म्स ऑफ ओके, अगर हमारा कल बच्चा होगा तो हम उसे होम स्कूल करेंगे या हम उसे धीरूभाई अंबानी की स्कूल में भेजेंगे, क्या ये विचार भी मैच होनी चाहिए?
नहीं, मैं उनके ह्यूमन ट्रेट्स देखूंगा कि ये अपने विचारों को लेकर कितने कठोरता से जीते.
हाँ.
मतलब कितने स्टिफ
फ्लेक्सिबल कितने है. हाँ. कि नहीं है.
हाँ. पहले मैं वो फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढूंगा. और दूसरी चीज, रादर देन देयर पॉलिटिकल ओपिनियंस, वो रिलीजन पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, मैं ये देखूंगा कि यार ये दूसरे इंसानों के साथ कैसे पेश आते हैं, दूसरे इंसानों से बात कैसे करते हैं.
जिनके साथ इनके ओपिनियंस नहीं मैच हो रहे, क्या उनको वो लुक डाउन कर रहे हैं या वो ओपन हो रहे हैं उनके ओपिनियंस के?
मतलब अगर आप खाने के लिए कहीं गए और वेटर से बुरी तरह से बात कर रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है. क्योंकि आई फील कि मेरे कोर में मैं बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान हूँ, स्वीट इंसान हूँ, और मेरे को ऐसा ही कोई चाहिए.
बिल्कुल.
पहले मैंने ऐसी भी लड़कियों को डेट किया है जहाँ मुझे लगा कि यार ये लड़की बहुत हरामी है, मुझे बैलेंस कर देगी क्योंकि मैं बहुत मासूम हूँ.
मासूम तो तू नहीं है.
मतलब मैं बहुत पोलाइट हूँ, मैं बहुत स्वीट हूँ एज अ बंदा, एंड ये इंसान इतने स्वीट नहीं है.
हाँ.
तो वो पहले मुझे अट्रैक्टिव लगता है.
शी विल लुक आउट फॉर मी.
हाँ, कि मेरे को प्रोटेक्ट करेगी.
हाँ, प्रोटेक्ट करेगी. हाँ.
पर वही प्रोटेक्शन जो मुझे पहले लगा था कि हाँ मैं इन्हें इसलिए डेट कर रहा हूँ, वो बाद में जाकर एक बहुत बड़ी फाइट बन जाती थी कि
अपने आप में ही फाइट हो रही है कि यार क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, नहीं ट्रस्ट
हाँ,
कर सकता हूँ
लोगों के साथ. वो बहुत मतलब
क्या एडवांटेज ले रहे मेरा कि नहीं ले रहे.
वो जो हरामीपन जिससे मैं अट्रैक्ट हुआ था, वो हरामीपन उनमें इतना ज्यादा बढ़ गया. क्योंकि देखो, जब कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे ना, इनिशियली 1 साल में, शायद 2 साल में भी, वो दूसरा इंसान आपको अपने बुरे चीजें कभी नहीं दिखाएगा.
हाँ.
अपने बुरे ट्रेट्स कभी नहीं दिखाएगा. पर उनके बुरे ट्रेट्स फिर 3 साल बाद 4 साल बाद निकल कर आएंगे. और फिर जब वो निकल के आते हैं, आपको उनकी असलियत पता चलती है, उनका कैरेक्टर रिवील हो जाता है आपके सामने.
क्या इसीलिए बोलते हैं कि यार बिफोर मैरिंग समवन गो आउट ऑन अ ट्रिप विद देम?
ये एक्चुअली बहुत बहुत सही. हाँ, लोगों लगेगा कि हाँ सेक्स के लिए ट्रिप करनी है. नहीं यार, मैरिज में अगर आप एक्चुअली टाइम को क्वांटिफाई करोगे, ठीक है, मतलब मान लो आपकी शादी किसी के साथ हो गई, तो आपने उनके साथ मान लो 50 साल बिताए, उन 50 साल का अगर आप पूरा टाइम स्पेंड देखोगे, उन 50 सालों में टोटली आप 1 महीने के लिए सेक्स कर रहे हो, ठीक है, पर 49 years and 11 months आप उनके साथ बस जी रहे हो बातें. हाँ, कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम
घूमने जा रहे हो, व्हाटएवर.
हाँ, वो आपको देखना है उस ट्रिप में,
राइट,
कि ये इंसान. और जब कोई ट्रैवल करता है ना, फिर से उनका कैरेक्टर रिवील हो जाता है ट्रैवलिंग के टाइम पे. तो आपको ट्रैवल करना बहुत जरूरी है या उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप करो. पर हमारे मतलब ये
कल्चर में पॉसिबल शायद
लिव इन रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है. पर मैंने ये भी देखा है, मेरे आसपास जितने भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मैरिजेस हैं, उनमें से काफी सारे मैरिजेस ने लिव इन से स्टार्ट किया, लिव इन ट्राई किया.
हाँ.
और फिर देखा कि हाँ मैं इस इंसान के साथ रह सकता हूँ, ये मुझे स्पेस दे रहे हैं या स्पेस नहीं दे रहे.
क्योंकि हमें पता है कि 4 दीवारों के अंदर हाउ आर 2 पीपल बिहेविंग. क्योंकि यूजली जब तुम रिलेशनशिप में हो तो या तो तुम 2 घंटे के लिए मिल रहे हो, 4 घंटे के लिए मिल रहे हो, रेस्टोरेंट्स में मिल रहे हो, बाहर कहीं मिल रहे हो, क्लब्स में मिल रहे हो, वेर यू आर एट योर बेस्ट बिहेवियर, राइट.
रिलेशनशिप को लेकर एक और चीज है, 3 ईयर मार्क होता है और 7 ईयर मार्क होता है. मतलब 3 ईयर मार्क पे आपको उनकी असलियत दिखाई देती है, उनकी असलियत की एक झलक दिखाई देती है. और अगर आप वो 3 ईयर मार्क तक नहीं पहुंचे, आपको उनकी कंप्लीट असलियत नहीं दिखाई देगी.
हाँ.
तो ये बहुत जरूरी मार्क होता है. एटलीस्ट किसी को 3 साल के लिए डेट करना चाहिए शादी करने से पहले.
ओके.
और सात साल के मार्क, अगर अगर सात साल के लिए डेट कर सकते हो करो,
लवली हाँ. हाँ,
क्योंकि सात साल पर आपको ये डेफिनेटली पता चलेगा कि आप अपनी पूरी जिंदगी इस इंसान के साथ बिता सकते हो या नहीं.
राइट
मतलब right. आपको इनके साथ बूढ़ा भी होना है या नहीं.
राइट
वो बहुत जरूरी है. और आई टेल यू व्हाट, एंटरप्रेन्योरशिप में हर करियर में ये सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, पर एंटरप्रेन्योर्स थोड़े से वॉलेटाइल इंसान होते हैं. वो दिस इज द नेचर ऑफ आवर जॉब, हमें हमेशा एक्टिव रहना, हमेशा काम के बारे में. मतलब आज अभी क्या, आज संडे, संडे के 8 बजे ये मेरा दिन का तीसरा पॉडकास्ट है. और आपने भी काम किया, आज पूरी सुबह आप काम कर रहे थे.
कल बर्थडे है मेरा.
हाँ, कल मतलब 4 घंटों में बर्थडे. पर वो थॉट्स नहीं रहते जब मैं इसे मिलता हूँ. मैं इसको हैप्पी बर्थडे नहीं विश करूंगा, मैं कहूंगा
क्योंकि हरामी दोस्त है, उसको याद नहीं है मेरा
बर्थडे. नहीं, मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड का बर्थडे आपके बर्थडे के टाइम, मतलब आप उनके साथ बर्थडे शेयर करते हो, इसलिए मुझे फिर पता चला. अच्छा, विराज का बर्थडे 12 अक्टूबर का.
नाइस.
तो बेसिकली
5 साल से दोस्त हूँ मैं इसका. 5 महीने पहले
नहीं, पर अगर आप अपने को-फाउंडर से मिलोगे, आपकी पहली इंस्टिंक्ट ये रहेगी कि
और कौन सा नया बिजनेस शुरू करूँ उसके साथ.
हम क्या क्या शिफ्ट करें, क्या चेंज करें, अभी क्या प्लानिंग करें, अभी क्या स्ट्रैटेजी करें. और इस झमेले में ना आपको एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पार्टनर की ज़रूरत होती है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग. मैं एक्चुअली ऑनेस्टली अभी एक रिलेशनशिप में हूँ, अभी स्टार्ट हुई है वो रिलेशनशिप. और उस रिलेशनशिप में मैंने ये देखा कि वो इंसान मुझे बहुत स्पेस देती है और स्पिरिचुअल भी है, तो मेरे जो दो बेस रिक्वायरमेंट्स है वो
मैच हो रहे हैं. हाँ. फिर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो टैकल कर सकते हैं
फिर वन डे एट अ टाइम. फिर आप देखो कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगी.
हाँ.
तो एंड ऑब्वियसली एक और सब फैक्टर होता है कॉन्वर्सेशनल एबिलिटी. वो हाँ. चलो वो तो खैर अलग बात है. ये पॉडकास्ट बेसिकली है एक एंटरप्रेन्योरशिप की पर्सनल लाइफ की झलक दिखाने लोगों को.
आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है फिलहाल, बियॉन्ड द फैक्ट कि हाँ मुझे बिलियनर बनना है, सबको पता है तुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए. हाँ. और क्या है प्रॉब्लम्स?
मुझे बहुत कुछ करना है. मुझे जो स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं सोचता हूँ, मुझे उसमें भी स्पीड चाहिए. मतलब मेरे को काम में तो स्पीड चाहिए ही. मैं अपनी टीम पर भी बहुत प्रेशर डालता हूँ स्पीड के.
बट नए रेवेन्यूज बिजनेस मॉडल्स में भी और स्पीड चाहिए.
पर मैं खुद पर भी ज्यादा प्रेशर डालता हूँ कि स्पीड के साथ सोच.
हाँ.
तो वो वाला, और ये एक्चुअली हेल्दी नहीं होता, और ये मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा. बट अगर आपने खुद के लिए बहुत बड़े बड़े गोल सेट कर दिया ना, ये उसका एक आउटकम रहता है.
राइट.
और आपको इसके थ्रू जीना पड़ता है टू गेट टू वे यू वॉन्ट टू बी वन योर 30. इसके ही पहले हमने हर्षिल कार्या के साथ एक पॉडकास्ट किया था हिंदी में. और उस पॉडकास्ट के पहले जब वो मुझे सुबह में मिले थे, तो मैंने उनसे ये पूछा यार कि देखो मेरे बैंक अकाउंट में इतना है, ये हमारे प्लान्स, और मुझे अभी भी लग रहा है कि 27 साल के होने के बाद मैंने बहुत कम अचीव किया है मेरे कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग. मैं इससे बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ. और फिर उन्होंने मेरे को शांति से बैठ के समझा, वो मेरे बड़े भाई की तरह है.
हाँ.
उन्होंने शांति से बैठ के ये समझाया कि यार चिल मारो, ये हर एंटरप्रेन्योर के साथ होता है. आपको हमेशा ये लगेगा कि आप ज़्यादा
कम कर रहे हो.
हाँ, कि आप स्पीड के साथ नहीं जा रहे हो. और देखो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म एक मैंने एम्ब्रेस कर लिया कि मैं हर हफ्ते एक बार एक डीप मेडिटेशन करता हूँ जहाँ मैं रोने लगता हूँ. और मैं कॉन्शियसली उस मेडिटेशन को स्टार्ट करता हूँ रोने की इंटेंशन
से.
और आप भी रोते हो इन प्राइवेट?
नहीं, मैं पब्लिक में भी रोता हूँ.
ये एक्चुअली हमारे समाज की एक बहुत बुरी बात है, जो लोग कहते हैं ना टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी.
हाँ.
मैं पहले इस चीज को समझता नहीं था.
हाँ, मैं भी, मुझे भी लगता था नहीं तो क्या है, तो मर्द हूं ना, क्यों रोऊंगा यार. बट आई एग्री, रोना, जब रोते हो आई थिंक इवन इन पब्लिक प्राइवेट व्हाटएवर इट इज विद अ पर्सन विदाउट अ पर्सन, वो आपको हल्का महसूस फील करता है.
मैं बहुत सिंपल मेटाफर दे दूंगा जो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे. रोना ना बिल्कुल हगने की तरह होता है. मतलब आपके अंदर
जो भी टॉक्सिंस है वो एक साथ निकल जाते हैं.
आपको पता है कि यार शिट, मेरे अंदर शिट भरी है. ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप टॉयलेट जाते हो और हग देते हो. क्राइंग इज एग्जैक्टली लाइक टेकिंग अ शिट, दैट्स व्हाट आई फील. एंड अगर मान लो आप अपने बिजनेस में फंसे हुए हो, आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, आप सेल्स कर रहे हो, आप निगोसिएशन कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप खुद पर भी प्रेशर डाल रहे हो, इन चीज़ों की वजह से किसी भी बंदे के अंदर इमोशनल टॉक्सिन्स भर जाते हैं, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स में. एंटरप्रेन्योर्स में वो इमोशनल टॉक्सिन्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आप ओपनली किसी चीज़ को ना नहीं बोल सकते हो. किसी दो टीम मेंबर्स के बीच लड़ाई हो गई, आपको ही जाके सॉर्ट करना. उस चीज़ की वजह से आपके इमोशनल टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और अगर वो बिल्कुल हगने की तरह होता है, आपको जाकर हगना है, कहाँ, अपने खुद के रूम में या अपने खुद के बाथरूम में.
Right.
या मेडिटेट करके वो इमोशनल टॉक्सिन्स रोने के थ्रू निकालने.
राइट.
बट ये बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये बहुत जरूरी है हर मर्द के लिए, अगर आपको ये लग रहा है कि आपने बहुत सारे इमोशंस को
दबा
के रखा है, तो प्लीज रिलीज कर,
इधर फाइंड अ पर्सन जिनके साथ आप इमोशंस, या तो थेरेपी ले सकते हो, या तो अगर इट कुड बी समवन लाइक योर मॉम और पेरेंट और फ्रेंड और हुएवर, जिनके सामने आप रो सकते हो, वो एक कंफर्ट स्पेस आपकी हो जहाँ पे आप सिर्फ आप बात कर सकते हो और रो सकते हो, दैट्स ओके. बट हाँ, थेरेपी इज मोस्ट रिकमेंडेड, और जो नहीं कर सकता है वो आइडियली शुड
ये ट्राई कर लो यार. यू नो, लोग कहते हैं ना कि हाउ डज मेडिटेशन डायरेक्टली हेल्प मेंटल हेल्थ, ये है वो आंसर. मेडिटेशन के थ्रू आपके इमोशनल टॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं, और ये आप तभी बिलीव करोगे जब आप ये एक्सपीरियंस करोगे. तो आई फील कि ये कोपिंग मैकेनिज्म बन गया है. ऑनेस्टली हर हफ्ते में एक बार रोता हूँ आजकल, बिकॉज हम बहुत चीज़ें प्लान कर रहे हैं, स्पेशली लॉकडाउन के दौरान. क्योंकि क्या होता है ना, विदाउट लॉकडाउन मैं आपको मिलता हूँ, ऑफिस आ जाता हूँ, सोहो हाउस जाता हूँ, वहाँ मुझे स्टिम्युलेशन मिल जाती है. मैं बहुत सोचता हूँ लाइफ के बारे में, बकचोदी करते हैं, वो खुशी भी मिलती है, तो उसकी वजह से इमोशनल बैलेंस हो जाते हैं. पर लॉकडाउन के दौरान मैं अपने रूम में बैठा हूँ और यही सोच रहा हूँ कि मुझे 10 साल के अंदर कहाँ पहुँचना है, 20 साल के अंदर कहाँ पहुँचना है. खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आजकल तो बहुत रोने लगा हूँ. पर एक और चीज़ जिसकी वजह से आई एम फीलिंग टू मच प्रेशर लेटली इज दैट,
चन्ना मेरा यार ज्यादा सुन
नहीं आम, ये इस चीज से मुझे मोटिवेशन भी मिली, पर मेरी भी फट गई. द लास्ट डांस, माइकल जॉर्डन की एक डॉक्यूमेंट्री, बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री, बहुत मोटिवेशन मिलेगी आपको. पर माइकल जॉर्डन भी खुद अपर खुद पर माइकल जॉर्डन भी खुद अपने आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते थे, और ये अच्छी चीज नहीं है. वो आज भी मतलब 7th या 8th एपिसोड उस सीरीज में वो भी रोने लगे. अभी मतलब उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया, जो भी अचीव करना था सब अचीव कर लिया.
राइट,
एंड आई एम श्योर कि वो अभी भी ये सोचते हैं कि मैंने अब तक ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया.
आप वो देखने के बाद फिर भी अपने गोल्स पे वो उतने ही डेडिकेशन के साथ जाना चाहते हो.
हाँ.
क्योंकि एक एपिसोड में वहां पे माइकल जॉर्डन ने इतनी फेम पा ली थी कि वो एक 4 दीवारों के बाहर नहीं जा पा रहे थे. एंड फॉर मी पर्सनली आई नो वी बोथ हैव हैड डिफरेंट गोल्स, जहां पे आपका गोल रहा है कि यार मुझे बहुत ही ज्यादा यू नो पैसे कमाने हैं फॉर द सोसाइटी, कि मुझे एट द एंड दे देना है पूरा, मुझे फेम चाहिए बट ओनली सो दैट आई हैव एक्सेसिबिलिटी दैट मच. और मेरा हमेशा रहा है कि यार ऑनेस्टली आफ्टर ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मैंने देखा है यार ये सारे सीरीज में तुम इतने फेमस हो जाते हो, तुम फ्रीडम तुम्हारी छिन जाती है. फॉर मी हैप्पीनेस इज फ्रीडम, मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ कल बिना किसी को पूछे, बिना किसी को कहे. अगर मुझे ट्रिप लेनी है मैं ट्रिप ले लूँ, अगर मुझे किसी के साथ घूमना है मैं घूम लूँ उनके कंसेंट के साथ, जो भी करना है राइट, मुझे जितने बजे सोना है मैं जितने बजे उठना है वो करूँ. बट अगर इतनी फेम के बाद भी अगर आप रिस्ट्रिक्ट ही हो रहे हो कि अपने आप अपने रूम के बाहर भी नहीं जा सकते हो, क्या आपको फिर भी वो चीज़ चाहिए?
मैं जब मेरे लॉन्ग टर्म लक्ष्य के बारे में सोचता हूँ, मुझे हमेशा वो गाँव दिखाई देते हैं जहाँ मुझे घर बनाने हैं, खुद के लिए नहीं समाज के लिए. और मैं बस उसी चीज पर फोकस कर सकता हूँ. और अगर मुझे वहां तक पहुंचना है आई एम रेडी टू टेक दैट बुलेट ऑफ.
ओके,
ठीक है. अगर आपको मेरा फ्रीडम छीनना है मेरे से, मेरा मेंटल हेल्थ छीनना है मेरे से, आई एम ओके विद इट. मैं और आई डोंट नो, ये बहुत शायद ये बुरी चीज है मेरे में, पर मेरे में पहले से बहुत ज्यादा मिलिट्री मेंटालिटी रही है.
राइट,
आप ये जानते हो मेरे बारे में.
राइट,
कि मतलब हमने मंकी में भी कोई बड़ी चीज अचीव कर ली.
राइट,
आप मुझे कॉल करके कहोगे कि ये हो गया, और मैं आपसे कहूंगा कूल अब क्या कर रहे
हैं. एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट हिम. सो अब मैं उनको कॉल ही नहीं करता हूँ कि भाई ये अच्छी चीज कर ली हमने, क्योंकि ये भाई कोल्ड ब्लैंक रिएक्शन है कि हाँ ठीक है कूल नेक्स्ट करते हैं अभी.
हाँ,
बोला बट ठीक है सेलिब्रेट तो कर ले.
इसलिए ये हमारे को फाउंडर है, क्योंकि ये चीज समझते हैं. इसी ट्रेड की वजह से मेरे बहुत झगड़े हुए हैं बिजनेस में.
हाँ.
क्योंकि मैं किसी चीज को सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, और अगर किसी ने हमारी भी मार दिया तो भी मैं उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता. हाँ, जैसे वो हेट का एग्जाम्पल दिया. एंड आई फील कि वो विलेज तक पहुंचने में मुझे
वो मेंटालिटी,
हाँ इंटरनली ये मेंटालिटी की जरूरत है. और अदर देन दैट आई फील कि यार कल मैंने सब गोल्स अचीव कर लिए, फाइनेंशियल गोल्स, फेम गोल्स, बिजनेस गोल्स. तो पहले मैं बहुत सोशल वर्क करूँगा, उसके बाद मैं एक वो सन्यास ले लूँगा. मुझे सच में एट सम पॉइंट सन्यासी बनना.
सन्यास लेके क्या करना है आपको?
मुझे बस मेडिटेट करना है, और क्योंकि मैंने मेडिटेशन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, और मुझे पता है कि वो मेडिटेशन की दुनिया में, वो सन्यास की दुनिया में क्या क्या होता है.
आपके दिमाग के अंदर क्या क्या होता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या क्या होता है, और मुझे वो चाहिए, वो असली खुशी होती है. वो मैं अभी ऑलरेडी एक्सपीरियंस करने लगा हूँ इस मायावी दुनिया में. वो चीज मैंने ढूंढ ली है पर उसकी एक झलक मिली है मुझे, मुझे उस झलक को
डीप जाना है.
पर उसके पहले मेरी इंडिया के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे अफ्रीका के लिए बहुत कुछ करना है, अर्थ के लिए बहुत कुछ करना है, फिर मैं संन्यास ले लूंगा. और ये मुझे करना है, और शायद इसीलिए क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें प्लान करके रखी है, मैं खुद पर अभी स्पीड का प्रेशर डालता हूँ कि नहीं, स्पीड के साथ सोचो, स्पीड के साथ काम करो. मैं टीम पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता हूँ, इट्स नॉट ईजी टू वर्क विथ मी एट ऑल.
बट क्या आपकी टीममेट्स की मेंटल हेल्थ सही है इसकी वजह से?
मैं ऐसे टीममेट्स सिलेक्ट करता हूँ जो
चूज करते ये.
हाँ, मैं उनको कहता हूँ
इंटेंसिटी के साथ काम करना.
हाँ, मैं कहता हूँ कि अगर नहीं कर सकते तो सॉरी. अगेन माइकल जॉर्डन मेंटालिटी
क्लियर रख देते हो आप कि अच्छा ठीक है, दीज आर माय वर्किंग आवर्स. अगर आपको सूट होते, अगर आप वो मेंटालिटी के साथ जीना चाहते तो प्लीज बी ऑन बोर्ड.
मैं हमेशा आपको कॉल करके एक चीज कहता हूँ कि मुझे और विराजेस क्यों नहीं मिलते, क्योंकि आप भी मेरे जैसे चूते हो स्पीड को लेकर. आप भी स्पीड, आप बहुत फास्ट भागते हो. इनफैक्ट आप एक जमाना हुआ करता था जो आप मेरे से भी बहुत ज्यादा फास्ट भाग रहे थे.
बिल्कुल.
एंड आई हैड टू कीप अप.
राइट राइट.
पर आई फील कि आपको भी, और क्या होता है हमारी एक रिलेशन, बिजनेस रिलेशनशिप में एक बहुत की फैक्टर है कि मैं आपसे 2 साल बढ़ा हूँ.
राइट.
तो मुझे 2 साल ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ है, और उस चीज की वजह से जो चीजें मेरे साथ हो रही है वो आपके साथ हमेशा 2 साल बाद होती है.
राइट राइट.
तो मैं आपको कहता हूँ कि ये पैटर्न और ये तेरा ये फेज है, ये वो फेज है. तो आई फील कि आपको भी ये फेज से गुजरना पड़ेगा, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज अभी होने वाले हैं.
राइट.
पर आप मेरे से बहुत ज्यादा स्टेबल हो इन द हेड.
राइट.
मैं थोड़ा फायरी हूँ ये वो, इसलिए देखो जब आपके अंदर बहुत ज्यादा आग होती है ना, आप या तो वो आग दुनिया को बनाने में लगा सकते हो
या खुद को ही जलाने में.
और वो भी होता है, वो आज भी मतलब एट एज 27 भी होता है मेरे साथ. मैं बहुत खुद को जलाता हूँ.
राइट.
पर आप शायद ये नहीं करोगे, आप मेरे से बहुत ज्यादा मच्योर हो. दैट्स व्हाई वी वर्क एज अ टीम. आप वो ठंडक लाते हो लाइक टीम में, एंड वो भी चाहिए रहता है. तो चलो अभी पॉडकास्ट के एंड में आ गए, ये थोड़ा एमलेस पॉडकास्ट था, पर मैं लोगों को ये झलक देना चाहता था कि एज एंटरप्रेन्योर्स आपके दिमाग की बैक एंड में क्या चलता है. आपको क्या लगता है, आप स्विच ऑफ कर पाते हो एंटरप्रेन्योरशिप से? आप मंकी के बारे में ऐसा कोई दिन होता है जहां आप उठ के मंकी के बारे में नहीं सोच रहे हो?
हाँ यार, कभी कभी उठ के इसे फैलाने का मन होता
है. और
हाँ यार, कभी कभी उठ के सिर्फ ऐसे फोन पे इंस्टाग्राम चेक करने का मन होता है. ठीक है, आई एम नॉट दैट हार्ड वायर्ड कि यार जागते सोते खाते पीते टाइम सिर्फ स्टार्टअप के बारे में सोचो. सोचना चाहिए, बट ठीक है यार, वरना थोड़ा एक ब्रेक भी देना सीखो, वरना वो क्लॉग हो जाएगा ब्रेन. ठीक है, तो वो एक ही टाइप की सिचुएशन में आप सोच पाओगे कि हाँ मुझे नेक्स्ट टास्क क्या करना है. आप दूर का सोच ही नहीं पाओगे कि मैं कहाँ कहाँ गलत जा रहा हूँ, क्या क्या सिस्टम्स मेरी गलत चल रही है, किस चीज़ में और मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. तुम इमीडिएट क्या होगा वही सोच पाओगे कि अच्छा नेक्स्ट 10 मिनट में क्या करना है. क्योंकि वो टनल विजन, वो हॉर्स विजन डेवलप हो जाता है. यहाँ बाकी सब जगह पे पट्टा लगा हुआ है.
कहाँ पट्टा लगा हुआ है?
बाकी सब जगह. ओके. तो हाँ, ऐसा नहीं कि यार पूरे टाइम मैं सिर्फ मंकी के बारे में सोच रहा हूँ, बट जब नहीं सोचता हूँ ट्राई करता हूँ कि यार थोड़ा कुछ अपने आप को डिस्ट्रेस कर दूँ. या तो मैं कॉमेडी शोज काफ़ी देखता हूँ नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम वगैरह पे, या तो थोड़ा म्यूजिक सुन लेता हूँ, संग्रहियो वगैरह सुन लेता हूँ कभी कभी.
शाउट आउट टू जसलीन.
तो हाँ, स्टफ लाइक दैट. या फिर डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ कूल वाली, जैसे बैड बॉय बिलियनेयर्स बहुत कूल लगी थी मुझे. देखी आपने? देखी.
हाँ, उसकी बात हो गई एक पॉइंट.
अच्छा, ओके. अच्छा ठीक है. बट हाँ, डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ या फिर पॉडकास्ट सुनता हूँ. द रणवीर शो नहीं सुनता हूँ, बेकार पॉडकास्ट. क्या पॉडकास्ट?
आप कौन से पॉडकास्ट सुनते हो वैसे?
मैं जो रोगन पॉडकास्ट सुनता हूँ जो असली वाला है.
ये देसी जो रोगन बना रहे हैं. पर सच में आप एक्चुअली कौन से पॉडकास्ट रिकमेंड करोगे लिसनर्स के लिए? एंटरप्रेन्योरशिप, लाइफ, जो भी.
जो रोगन एक्सपीरियंस फॉर श्योर. उनके जो सेलिब्रिटीज वाले पॉडकास्ट हैं वो मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, बट जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह के साथ है,
साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स,
यस, द पीपल हु हैव हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, जो ऐसी दुनिया में तुम्हें लेके जाएंगे जहां तुमने एंट्री भी नहीं की है. राइट, दैट इज अ ग्रेट पॉडकास्ट फॉर मी. बाकी मास्टर्स ऑफ स्केल करके एक पॉडकास्ट है विच इज डन बाय द सीईओ ऑफ लिंक्डइन, रीड हॉफमैन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जो सारे बड़े सीईओज, दुनिया के सबसे बड़े सीईओज, मार्क जकरबर्ग से लेके नेटफ्लिक्स के सीईओ से लेके सारे बड़े दिग्गज सिलिकन वैली और आगे के सीईओज को वो इंटरव्यू करते हैं, और वो बेसिक सवाल पूछते हैं कि भाई तूने फेसबुक को 10 एम्प्लॉय से 100 एम्प्लॉयज़ पे कैसे लाया, तूने फेसबुक का एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे पाया, तूने अगर नेटफ्लिक्स चलाया, तूने इतनी सारी इन्वेंट्री ऑफ कंटेंट, इतनी सारी मूवीज कैसे अक्वायर की, तूने ब्लॉकबस्टर वो टाइम पे हुआ करता था जो कंपटीशन था उनका, सिर्फ ब्लॉकबस्टर के ऊपर आप डीवीडीज और मूवीज ले सकते थे, तूने इतने बड़े प्लेयर को कैसे डिफीट किया उसके ही गेम प्ले में, थिंग्स लाइक दैट. और मेंटालिटी के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं कि यार तुम सोते हो क्या रात को, तुम्हें नींद कैसे आती है, यार तुम्हारे उस पर लाखों एम्प्लॉयज का वेट है, क्या 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 प्रैक्टिसेस करते हो तुम. सो दैट जस्ट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड कि यार उसमें से काफ़ी लर्निंग्स होती है. और एक लर्निंग मैं बोलूँगा, नेटफ्लिक्स की सीईओ ने अच्छी एक लर्निंग दी थी, ये हैड सेड कि यार मैं अपनी टीम ना फैमिली की तरह नहीं देखता हूँ. ये सब 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 लोग ना आजकल ये शुरू किया है कि नहीं यार तुम फैंस नहीं हो, तुम फॉलोअर्स नहीं हो, तुम नहीं यार तुम एम्प्लॉयज नहीं हो, नहीं तुम टीममेट्स नहीं हो, तुम फैमिली हो मेरी. सबसे गलत चीज़ है ये, क्योंकि जब तुम फैमिली होते हो तुम फैमिली को कभी कन्फ्रंट नहीं करते हो, तुम फैमिली को ऑलवेज स्वीटली बात करते हो कि नहीं ये ले तेरा कंसोलेशन सर्टिफिकेट, नहीं इट वॉज गुड दैट यू पार्टिसिपेटेड. तुम एकदम मॉली कॉडल करते हो, तुम टॉफी देते हो सिर्फ हमेशा फैमिली को. अगर ये तुम बिजनेस में लाना शुरू कर दोगे ना तो तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, सॉरी टाटा बाय बाय. क्योंकि बिजनेस में तुम्हें यू हैव टू बी ऑन योर फीट, यू हैव टू बी कंपेटिटिव, यू हैव टू बी श्रूड. यार जो बंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है उनको तुम ये नहीं बोलोगे कि नहीं बेटा ठीक है कोई बात नहीं 10 साल और रुक जा कंपनी में. नहीं भाई, तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा भाई नहीं है, तू अगर नहीं काम करेगा 2 चांस दूंगा 3 चांस दूंगा 10 चांस नहीं दूंगा यार मैं. सो यू हैव टू बिल्ड अ ड्रीम टीम. गैलेक्टिकोस का सीन पता है, रियल मैड्रिड, यार कोई लूज प्लेयर नहीं था वो लोग में. देवर द कोच वॉज ऑलवेज लुकिंग यार हु इज द बेस्ट फिट फॉर दिस स्पेसिफिक पोजिशन. गोलकीपर कौन है, मेरे को बेस्ट बंदा चाहिए. फॉरवर्ड कौन है, मेरे को बेस्ट बंदा चाहिए. दैट्स हाउ यू लुक एट बिल्डिंग योर बिजनेस टीम. वरना तुम यही सोचोगे तो तुम अपने सब चाचा भांजा बेटे को ही रखोगे ना टीम में, फिर थोड़ी गैलेक्टिकोस बनेगी. सो दैट्स हाउ, दैट वाज वन वेरी गुड लर्निंग फ्रॉम दैट मास्टर्स ऑफ स्केल पॉडकास्ट. टिम फेरिस का काफी अच्छा पॉडकास्ट है. ऑनेस्टली मैं ये वाले थोड़े ज्यादा पॉडकास्ट सुनता हूँ जहाँ पे आई गेट टू लर्न फ्रॉम पीपल्स एक्सपीरियंसेस. फिर भी मैं तो रणवीर शो नहीं देखता
क्योंकि आप वो ये पेज आते आप फेसबुक पे पेज हुआ करता था. ओके बस एंड करते पॉडकास्ट. थैंक यू विराज शेट फॉर बीइंग हियर. आई डोंट केयर इफ इट्स अब्रप्ट ऑनेस्टली. एंजॉय गाइज. ये था एंटरप्रेन्योरशिप इन इट्स रियल फॉर्म. यस बाय.